हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुनैना कमरे के बाहर खिड़की के पीछे छिपी हुई थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कुछ देर के लिए उसे ना पकड़ा जाए और वे लोग वापस चले जाएं। पूरे कमरे में सुनैना को ढूंढते हुए उस आदमी ने तेज आवाज में चिल्लाया, कहाँ गई वो लड़की, कहाँ गई? हमारा बॉस सनकी है, वो हमें जान से मार डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। हम एक लड़की पर नजर नहीं रख पाए, वो कैसे भाग गई? तेज आवाज में चिल्लाते आदमी का चेहरा सुनैना को दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे में बहुत अंधेरा था सुनैना की वजह से, इसलिए उन्हें खिड़की के बाहर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं तो सुनैना शायद पहले ही पकड़ी जाती। सुनैना ने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद करके कहा, प्लीज प्लीज भगवान जी, बस थोड़ी देर और साथ दे दो, इस तरह किसी की नज़र न पड़े और मैं किसी तरह यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। उन दोनों आदमियों ने आपस में बात करते हुए कहा, नहीं है वो लड़की यहाँ पर, पूरे कमरे में देख लिया, वो पक्का भाग गई है। चलो कहीं और ढूंढते हैं, अभी घर से बाहर नहीं निकली होगी। इसके बाद सुनैना को पुराने कमरे के दरवाजे के बंद होने और खुलने की आवाज़ आई। कुछ सेकंड बाद उसने खिड़की से झांककर अंदर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। सुनैना ने इधर उधर देखा तो आगे कई गार्ड थे जो उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए सुनैना खिड़की के रास्ते उस कमरे में वापस आ गई। वो सोचने लगी कि बिना किसी की नज़र में आए वो बंगले के बाहर निकलने वाले दरवाजे तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उसे मेन गेट तक का रास्ता ठीक से पता नहीं था। अनय के घर उन दोनों के लिए कॉफ़ी टेबल पर रख कर जैसे ही मनस्वी बाहर गई, उसने अपना कप हाथ में उठाते हुए पूछा, कुछ पता चला? अनय ने दोनों हाथों से अपने बाल नोचते हुए कहा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, विराज ने कांड कर दिया है, उसने आदित्य की वाइफ को किडनैप कर लिया है और उसे पता नहीं कहाँ लेकर गया है। अनय की बात सुनकर मनस्वी गुस्से में बोली, पता नहीं क्या करना चाहता है वो लड़का, ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, और अगर इसने उस लड़की के साथ कुछ भी किया तो मैं खुद इसे पुलिस के हवाले करूंगी और जो भी सजा होती है वो दिलवाऊंगी। अनय ने उसे चुप कराते हुए कहा, ओ मनस्वी प्लीज, ये वक्त ऐसी बड़ी बड़ी बातों का नहीं है, हमें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस सुनैना को, क्योंकि आदित्य उससे बहुत प्यार करता है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो आदित्य सह नहीं पाएगा। अनय की बात सुनकर मनस्वी मजबूती से बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है उन सारी गलतियों को ठीक करने का, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, सुनैना या आदित्य, दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। अनय मनस्वी की बात सुनकर अनय ने परेशानी और कन्फ्यूजन के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। वो अपनी कार की चाबी ढूंढते हुए उठी और दरवाजे के बाहर जाने लगी। मनस्वी को अचानक वहां से बाहर जाते देख अनय भी अपनी जगह से उठा और दौड़कर उसके पीछे आया, फिर थोड़े तेज से चलकर उसके सामने आकर बोला, हे मनस्वी, एक मिनट रुको तो सही, कहाँ जा रही हो ऐसे अचानक? क्या तुम्हें सच में पता है कि विराज सुनैना को कहाँ लेकर गया होगा? पता है तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ ना इसके बारे में, इस तरह से अकेले कहाँ जा रही हो? मनस्वी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक करने का वक्त आ गया है, मुझे जितना पता है, और रही बात जगह की, तो एग्जैक्टली लोकेशन मुझे भले ही ना पता हो, लेकिन शायद इसका कुछ अंदाज़ा है। अनय काफ़ी निराश होते हुए बोला, मनस्वी, ये वक्त इस तरह के अंदाजे लगाने का नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ, और रहने दो, तुम जहाँ भी जा रही हो मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊँगा। मनस्वी ने सीधे मना करते हुए कहा, नहीं अनय, ये सिर्फ मेरी लड़ाई है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसके अलावा तुम्हारी यहाँ पर भी ज़रूरत है, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, क्या कर रहा है? मनस्वी इतना बोल रही थी कि अनय उसे सब कुछ नहीं सुन पा रहा था। उसने मनस्वी के मुंह पर हाथ रखकर अपने हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए कहा, कुछ भी सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बहुत दिन तुमने अपनी मनमानी कर ली मनस्वी, लेकिन अब और नहीं, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ। अनय के इस रिएक्शन पर मनस्वी रुक गई और अपनी बड़ी आंखों से हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अनय ऐसा क्यों कर रहा है। क्या जिस तरह उसे अनय की फिक्र है और वो नहीं चाहती कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे, क्या इसी तरह की तकलीफ मनस्वी को भी हो रही है और वो इसीलिए उसे अपने साथ आने से मना कर रही है? उस रेस्टोरेंट में मिलने के बाद रागिनी और अक्षत दोनों वहां से निकल गए। रागिनी ने वहां से निकलकर किसी को फोन कॉल किया। अक्षत इस बार अपने घर ना आकर वहीं थोड़ी देर के लिए रुका था, क्योंकि वो रागिनी पर नजर रखना चाहता था। रागिनी के फोन कॉल करने के कुछ देर बाद एक कार रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। रागिनी ने थोड़ा इधर उधर देखा, वो दूर से पहचान में नहीं आ रही थी। अगर अक्षत ने उसे सामान्य रूप से देखा होता इतनी दूर से, तो वो उसे पहचान नहीं पाता। अक्षत ने उसे उसके कपड़ों और बाकी एक्सेसरीज की वजह से पहचान लिया, क्योंकि वो अभी अक्षत से मिलकर वहां से बाहर निकली थी। कुछ ही देर में रागिनी उस कार में बैठकर वहां से चली गई। जब रागिनी कार में बैठने के लिए दरवाजा खोलती है, तब अक्षत ने देखा कि उस कार में पहले से ही बैक सीट पर कोई बैठा हुआ था, जो ठीक तरह से अक्षत को नजर नहीं आया। लेकिन अक्षत ने ध्यान से उस कार का मॉडल नोट किया, लेकिन इतनी दूर से वो नंबर नोट नहीं कर पाया। लेकिन जिस बात का उसे शक था, वो कहीं ना कहीं उसे सच होता नजर आ रहा था। उसकी तरफ देखकर अक्षत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरा शक सही निकला। ये रागिनी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है और वो किसी और के बच्चे को मेरा बता रही है। मुझे सच बहुत जल्द पता करना होगा। उसके वहां से जाने के बाद अक्षत ने भी अपना मोबाइल फोन निकालकर अजय और अपने सिक्योरिटी के नंबर डायल किए और उन्हें इस बारे में बताया और आगे पता करने के लिए भी कहा। अजय से इतनी बात करने के बाद अक्षत कॉल डिस्कनेक्ट ही करने वाला था, लेकिन तभी उसे सुनैना के बारे में याद आया। उसने पूछा, एक मिनट अजय, ये बताओ, कुछ पता चला क्या सुनैना के बारे में? दूसरी तरफ से अजय का जवाब आया, नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और वो कार जो यहाँ पर आई थी, उसका मालिक भी इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है, जो बता रहा है कि उसकी कार तो कब से उसकी पार्किंग एरिया में ही खड़ी है। अक्षत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। जिस भी तरह से तुम इसमें आदित्य और उसके सिक्योरिटी वालों की मदद कर पाओ, पूरी हेल्प करना। और जल्द से जल्द सुनैना को ढूंढने की कोशिश करो। और ये रागिनी वाला मैटर, इसके पीछे भी किसी को भेजो, लेकिन अभी सुनैना को ढूंढना ही हमारी प्रायोरिटी है। इस रागिनी वाले मैटर को हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। पूरी बात समझते हुए अजय ने एकदम प्रोफेशनली जवाब दिया, ओके सर, मैं समझ गया कि क्या करना है। अजय से बात करने के बाद अक्षत ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल फोन अपनी पॉकेट में रख लिया और वहां से सीधा पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा। वो वहां अकेले ही आया था, इसलिए अपनी कार में बैठने के बाद उसने खुद ही कार ड्राइव की और वहां से निकल गया। क्रमशः